आप देखिए कि हम अमूमन ये काम क्यों नहीं कर पाते। हम कहते हैं हम वीक हैं, हम थोड़े हैं, रिसोर्सेस नहीं है, मेरी खानदान मेरी फैमिली में कोई ऐसा है नहीं। ये गुमान है ना हमारा। मेरी दोस्तें नहीं मानती तो आइए जरा अगली आयत तो मैं अल्लाह ताला आपको तरीका सिखाता है। आयत 26, वस्कुरु इज़न तुम कलीलु मुस्तदफून फिल अर्थ, और याद करो वो वक्त जब तुम कितने थोड़े थे, बहुत थोड़े थे, कि जमीन में दबा लिए गए थे। तखाफ होना ये तखत्तफकुम उन्नास, तुम्हें अंदेशा था कि लोग तुम्हें उचक ले जाएंगे। फिर क्या हुआ, फावाकुम वैयदकुम बिनस्रिही, तो अल्लाह ने तुम्हें पनाह की जगह दे दी और तुम्हारी मदद की। वरजकुम मिनत तय्यिबात, और तुम्हें बेहतरीन पाकीजा रिज़्क़ अता किया। क्यों, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये किसको कहा जा रहा है? आप कहेंगे कि ये मक्का वालों को कहा जा रहा है कि आज बदर के मैदान में निकलने से पीछे हट रहे हो। अल्लाह ने तुम्हें अपनी जगह दे दी, अपनी जमीन दे दी, एक आजाद रियासत दे दी, याद करो मक्का में क्या हालात थे। आपको था कि 3 साल तक शुरू में नबूवत के आगाज में जो मुसलमान होता था ना, वो अपना नाम छुपाता था, नमाज नहीं पढ़ते थे, घाटियों में जा जाके छुप छुप के इबादत करते थे। कौल है किसी का कि इस्लाम बंद कमरों में था, यहाँ तक कि उमर मुसलमान हुए। जिस वक्त उमर मुसलमान हुए, सहाबा को इत्तला मिली, इतनी जोर से नारे तकबीर लगाया, कहते हैं कि मक्का की पहाड़ियां लरस गई। पहली दफा उमर के मुसलमान होने के बाद बैतुल्ला में जाके नमाज पढ़नी शुरू की लोगों ने। क्या थे तुम कल, आज अल्लाह ने जगह दी तो चौड़े हो गए हो, ढीले हो गए हो, रिलैक्स हो गए हो। हम सब सोचे नेमत नहीं होती तो कहते कभी जगह मिल जाए, कभी चीज मिल जाए, वो क्या बड़ी बात है। कल कहोगे अल्लाह आज दे देगा, पहले देखो उसका हाल क्या करना है तुमने। ईमान है, जगह है, वक्त है, हिम्मत है, कुर्बानियां दे सकते हो। तुम तो अभी अपनी जात के खौल से नहीं निकले, तुम्हें अल्लाह क्या दे। तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला हमें, और आज इसको अगर अपने पाकिस्तान पे ले लीजिए, प्यारा पाकिस्तान, तो हम क्या थे, बरेसगीर पाक व हिंद में एक अकलियत थे, मिनोरिटी में थे। खौफ था हर वक्त हमें इर्द गिर्द के कौमों से कि ये हमें उचक लेंगे, हमारे हकूक नहीं है, हमें जॉब्स नहीं मिलेंगी, जान माल का खतरा। फावाकुम वैयदकुम, फिर 14 अगस्त 1947 को क्या दे दिया, कितना प्यारा पाकिस्तान दे दिया। तो तुमने उसका हाल क्या किया, शिर्क से भर दिया, करप्शन से भर दिया, खराबी की, मात नहीं मानी, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं की। मैंने किसी का एक टॉपिक देखा तो किसी दूसरे मुल्क से, यानी सऊदीया के नाते से, उन्होंने लिखा कि तुम पाकिस्तान वाले यहाँ आके तो जो करोगे तो करोगे, तुम जरा अपने मुल्कों का हाल तो देखो, अभी वहां कितनी जरूरत है तुम्हारे काम की। और हकीकत है, जब नेमत मिल जाती है ना, तो बंदा उसको अपना हक समझ के रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ इशारा क्या है, ये पीछे से चल रहा है सारा मजमून और आगे भी चलेगा, कि अल्लाह और उसके रसूल की दावत को अगर लब्बाई कह दिया ना, तो फिर ये ना देखो कि रिसोर्सेज कितने हैं, हालात कितने, कितने लोग साथ लगेंगे, कितने चलेंगे, कितने चलेंगे। चल पड़ो, वरना फितनों में आओगे, फिर इज्तमाही फितने होंगे जिसमें तुम्हारी अपनी नस्लें भी नहीं बचेंगी। अगर नॉन मुस्लिम फितने में, तो आज मुस्लिम भी फितने में, यंगस्टर अगर उनके चैलेंजिंग में, तो तुम्हारे बच्चे भी चैलेंजेस में। तो लिहाजा करो, क्या सफाई करो। याद रखिए, मुसलमान सोसाइटी कभी खुद गर्ज सोसाइटी नहीं होती। अगर हम इस काम को नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कभी आपने सोचा कमल का फूल कहाँ फैलता है? कीचड़ में। तो तुम कमल का फूल बन जाओ, अपने बच्चों को कमल के फूल बनाओ, अपने बच्चों को तरबियत दे कि बेटा इस सोसाइटी में गंदगी है, तुम नेक बन जाओ, देखना तुम कमल की तरह खिलोगे। लेकिन हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती, बड़ी मुश्किल से चमन में होता है दीदावर पैदा। और ये होता क्या बला हमारी बला से, कितनों को ये शेर आता है आपको पता, हमने किसी का दर्द नहीं लिया। सच्ची बात है, 1800 की सदी की सदी, 1800 की शख्सियत ही अल्लामा इकबाल, अगर हमने सिर्फ उनका ये दर्द लिया होता तो आज हमारा पाकिस्तान हकीकत में पाकिस्तान होता। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमें एहसास पैदा हो जाए हम हैं कौन। इसीलिए फरमाया कि थोड़े थे अब ज्यादा हो गए हो, अब इसकी कदर करो। और क्या ना करो, आयत 27, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाहा वर्रसूल, अहले ईमान मत खयानत करो अल्लाह और उसके रसूल की। ये कौन सी अमानत आ गई भाई, जो सारी पीछे से चल रही है, वादा अलस्त अमानत, कुरान अमानत, जिहाद, उसी का जवाब है। इस्तजीब लिल्ला ही ना करोगे तो खयानत करोगे। खयानत का लफ्ज उर्दू में भी बोलते हैं, हक से कम देना, हक मारना, अपोज करना। तो दीन अमानत, जिस्म अमानत, जिम्मेदारियां, खाना पकाना, इन सब से अपने आप को बचाओ। यानी मुझे इधर इतना ही समझ आ रहा है कि अगर तुमने मिशन की जिंदगी छोड़कर जात की जिंदगी बसर की तो ये खयानत है। क्या आप मेरी इस बात को समझे? आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा अगर नबी के मिशन को छोड़कर जाती फायदे नुकसान वाली जिंदगी बसर करके चली गई, कल क्या होगा? भाई आप अपने बच्चे के लिए 1 मिलियन पाउंड छोड़ के मरे, लेकिन अगर इज्तमाही तौर पे यहाँ के सारे मुसलमान दबा लिए गए तो आपके बच्चों को वो 1 मिलियन पाउंड फायदा देंगे? एक नहीं 6 घर छोड़ के मरते हैं आप बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों में से अल्लाह रहम करे कि किसी पे कोई ऐसा फितना आ गया जिसकी जिक्र हुआ ऊपर, तो क्या बचेंगे? पता क्या चला कि जब हम दूसरों को हक नहीं देते ना तो हमारा भी हक चला जाता है। इसीलिए कहा कि सर अमानत में खयानत ना करो। सबसे बड़ी अमानत आपको पता है हमारे पास अल्लाह की क्या है? कोई एक लफ्ज में बता सकता है तो हाथ खड़ा करे। सबसे बड़ी अमानत, अमानत को उसके सेंस में ले ना कि चीज किसी की थी उसने आपको दे दी। जी आप पीछे से। जिंदगी जी स्मीना जी। दीन की दावत जिसम हमारी रूह। नफ़ख तो ही ये मेरी रूही, ये जो रूह है ना ये अल्लाह ने दी हुई है थोड़े दिन की, इस रूह को गुनाहों से मुलव्वस करना ये खयानत है। यही बात सूरत अलअहज़ाब की आखिरी आयत में आप पढ़ेंगे, आयत 72 में, इन्ना अरदना लअमानत अलस्समावाति वलअर्दि वलजिबाल, हमने अपनी अमानत को आसमानों, जमीन और पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने इसको उठाने से इनकार कर दिया। फावैना यहमिलनाह वशफ़क़ना मिनहा, और इससे डर गए। वहमलह अलइंसान, और इंसान ने इसको उठा लिया। इन्नहु काना ज़ुलूमन जहूला, क्योंकि इंसान है ही बड़ा जालिम और जाहिल। दीन, शरीयत, अल्लाह के रसूल की बातें, ये सब अमानत है। ये नॉन मुस्लिम्स को जो आपने दीन नहीं दिया ये भी खयानत है। अपने कैरियर की फिक्र, अपनी जॉब की फिक्र, अपने रिश्तों की फिक्र, अपने घर सजाते रहते हो, दिल नहीं सजाते। खवतखून अमानातिकुम अंतुम तालमून, और ना ही आपस की अमानतों में खयानत करो जानते बूझते। यानी अल्लाह के बंदों के मामलों में भी ऐसे ना करो कि पकड़ हो जाए। फिर आए 28 में दोबारा वालमो, इस वालमो को दिल के ऊपर लिया करे, जान लो, रिमेम्बर, खबरदार। अन्नमाम वालुकुम वाउलादुकुम फितना, जान लो कि तुम्हारी माल और तुम्हारी औलाद फितना है। खयानत के फौरन बाद फितना, और फितने में माल और औलाद क्यों? कि अमूमन अक्सर खयानतें इन सब चीजों के साथ जिनका ऊपर तस्करा हुआ, इंसान या तो माल के हसूल के लिए करता है या औलाद की खुशी के लिए। सच के झूठ? और अगर आप गौर करें ना तो माल मर्द की कमजोरी है और औलाद बीवी की, या मर्द बीवियों को खुश करने के लिए हराम माल कमाते हैं, या बीवियां बच्चों की खुशी को देखते देखते अल्लाह को नाराज कर देती हैं कि बच्चों की खुशी का मामला था, और सारी जिंदगी नहीं दो को खुश करते हुए कोल्लू के बेल बन के गुजार देते हैं, अपने अंदर जान नहीं बचती फिर भी कमाते हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए अपनी दुनिया खराब है। का इनको छोड़ो, वन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, अल्लाह के पास बड़ा अजर अजीम है। और फितना कहते हैं उस चीज को, गौर से सुनिएगा, जो हो नेमत लेकिन उसका गलत इस्तेमाल उसको आजमाइश बना दे। बात समझ? जैसे आप ये देखिए कि ये माइक मेरे लिए एक नेमत है ना, अच्छी चीज है ना, तो मैं इसको पकड़ के पानी के इस ग्लास में डुबो दूं तो क्या होगा? इसमें करंट आ जाएगा। ठीक है, तो औलाद नेमत है, क्योंकि लोग पूछते हैं कि क्या बताएं भी, औलाद नेमत है या आजमाइश है? तो है नेमत, गलत तरबियत करते हैं, गलत उनकी देखभाल करते हैं तो आजमाइश बन जाती है। और फिर आप देखिए कि वो खूबसूरत नुक्ता जिसका इंतजार हम कर रहे थे 29 में, जब इन सारी बातों को एक्सेप्ट करने के बाद आपको और मुझे मिलेगा तक्वा और फुरकान। 29, या अय्युल्लज़ीना आमनु इन तत्तकुल्लाहा यजअल लकुम फुरकाना, अहले ईमान अगर तुम अल्लाह के तकवे पर कायम रहोगे तो वो तुम्हारे लिए फुरकान पैदा कर देगा। नंबर 1 लिख लें। और तकवा के फवायद क्या है? नंबर दो, वायुकफिरन कुम से जियातिकुम, और दूर कर देगा तुमसे तुम्हारी बुराइयां, और तीसरा वयाग़फिर लकुम, और तुम्हारे गुनाहों को माफ करवा देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह साहिब फजल है, बहुत बड़ा फजल है उसका, उस मालिक का तुम पे बहुत बड़ा करम है। यहाँ देखिए कि अब एकदम तकवा की बात आ गई, क्योंकि तकवा क्या होता है, हिफ्ज़ुन नफ्स नम्मा योसम, अपने नफ्स को हर उस चीज से बचाना जो आपको गुनाहगार कर दे। ये पीछे से इस्तजीबु लिल्लाही से लेके अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा ना, अगर इन सब चीज़ों पे अमल करेंगे ना, तो ये तकवा है। तकवा के बड़े खूबसूरत रंग है। आप कह लें कि डर इंसान की सोई हुई हिस्सों को जगा देता है। मसलन फजर के वक्त आंख नहीं खुलती, नहीं खुलती ना, डर नहीं है इसलिए नहीं खुलती। हल्का सा अंदेशा हो जाए ना कि इस बिस्तर में सांप का बच्चा घुस आया, तो सोएंगे। तो जब कवर का सांप याद आएगा तो उठ जाएंगे। तो फजर के लिए क्यों नहीं उठते, क्योंकि डर नहीं है, तकवा नहीं है। और फुरकान क्या है कि नेमत का एहसास कोई नहीं है, हक और बातिल का फर्क। सूरह फुरकान पे ज्यादा बात मैं करती होती हूँ जाके सूरह फुरकान में, क्योंकि उसमें तीन दफा ये लफ्ज आता है। लेकिन यहां समझ लीजिए कि आपका नफ्स आपको बताए ठीक क्या गलत क्या है। अक्सर लोगों से क्यों पूछते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, क्या ख्याल है ये ठीक है नहीं गलत है। तकवा का एक आखिरी मुकाम आता है बंदे के ऊपर कि इस्तफ्ते कल्बक की कैफियत हो जाती है, आपका दिल आपको बताता है ये ठीक है कि गलत है। फिर दूसरे फतवे दे दें, वो कह दें नहीं नहीं आज के दौर में ठीक है, वेस्ट में रहते हुए ठीक है, खा लो पी लो थोड़ा सा ले लो दे लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपका तकवा नहीं सोने देता। ये तकवा साहब है ना, ये चौधरी साहब है, चौकीदार है आपके, गार्ड मैन है आपका, आपका सिक्योरिटी मैन है आपका तकवा। ये आपको इधर जाने ही नहीं देता जिधर आपकी कोई पकड़ होने वाली है। ये फुरकान है, नहीं जो आगे खतरा है, डेंजर डेंजर डेंजर। कभी आप रॉन्ग टर्न लेते हैं तो आपकी गाड़ी बोलती है वन वे था, तो आप दूसरी तरफ से आगे एकदम ख्याल आता है तो क्या होता है, सबसे पहले डर होता है कि आगे वाली गाड़ी ना मार दे। तो ये तकवा है, ये फुरकान है। फिर ये लाड वाली गुना नहीं होते हो, फुलान नाराज हो जाएगा, फिर आप एक्चुअली बहुत डर लगता है, बहुत बहुत बुरा लगता है। फिर वो बेटी के ससुराल और बेटे के ससुराल, अच्छा पहले तो थे बेटी के ससुराल एक हवा, कल की बात है, कोई आज से 10-15 साल के जो बैकवर्ड लोग थे उनको छोड़ दे, आज का मसला बेटे के भी ससुराल है, बेटे के ससुराल। असल बात वही बात है, इस्तजीबु लिल्लाहि वल रसूल में कमी है, वरना ये कभी नहीं हो सकता। इतनी प्यारी जात को नाराज करके बंदा इतने छोटे छोटों को करे, और अल्लाह कहते तुमसे इतनी सी बातें नहीं होती, देखो नबी ने क्या कुछ किया। बस आज ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारा दिल खोल दे और फुरकान मिल जाए, हक और बातिल का फ़र्क हमारे अंदर आ जाए। और हक और बातिल का फ़र्क ये होता है कि बंदे को पता चल जाए कि कौन सी नेकी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्या काम करूंगी तो मेरा फ़ायदा है, क्या काम छोड़ूंगी तो मेरा नुकसान है। क्यों ऐसा होता है कि बंदा सरासर अपना नुकसान कर रहा होता है, लेकिन अंदर से नफ्स थपकियां दे रहा होता है बिल्कुल ठीक कर रहे हो। ये तुम बहुत जज्बाती हो गई थी, असल में तुम बहुत इमोशनल हो गई थी, तुम्हें किसने कहा कि इतने जज्बाती होने की जरूरत है, जन्नत सबको मिल जानी है। तो ये तो सच है जन्नत सबको मिल जानी है, शर्क के बगैर होंगे, लेकिन जन्नत के दर्जे कोई नहीं मिलने। तो ये फुरकान और तकवा जन्नत के बेहतरीन दर्जे दिलाएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज हमें तकवा दे ही दे, ऐसा खौफ दे। अल्लाह के नबी की एक दुआ भी है कि अल्लाह मैं तुझसे उस तकवा का सवाल करती हूँ, खशियत कमा तहूलु बैनी व बैन मासियतिक, कि अल्लाह मुझे ऐसी खशियत दे अपनी जो मेरे और मेरे गुनाहों के बीच में रुकावट बन जाए। तो अल्लाह से ये दुआएं मांगेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला दिलों को मजबूत करेगा, बसीरत मिल जाएगी। देखिए अल्लाह के हुक्म को सुन के टस से मस ना होना, ये क्या है, ये ढीठपन है। और अल्लाह के हुक्म को सुन के अंदर हलचल मच जाए और उठ के करना शुरू हो जाए, यही तकवा है। और तकवा जब आता है दिल मजबूत होता है, बसीरत तेज होती है, और हिदायत का रास्ता फिर वाज़ेह होता है। एक नेकी आप करते हैं आपको दूसरी भी दिखती है, दूसरी करेंगे तीसरी दिखेगी, आप ऐसे भाग जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप सिराते मुस्तकीम पे आगे से निकल चुके होंगे। आप एक नेकी छोड़िए उसके साथ 100 नेकियों की डोरी कट जाती है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत में रखे। اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو تو دعوت دی، لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثال ہے. آپ ہر آیت کا دوسری آیت سے رب ضرور دیکھا کریں، اس کے ساتھ ذہن کھلتا بھی ہے اور قرآن پاک کی خوبصورتی پتہ چلتی ہے. کہ ہم سب کو آج شروع میں حکم ملا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی یہ حکم ملا تھا؟ تو نہ صرف یہ کہ حکم ملا، آپ نے اس پہ لبیک کہا اور آپ اس پر چل پڑے. مکی زندگی کے آغاز سے ہی اقرأ باسم ربک الذی خلق کی آیتیں جب اتریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل پر ایک بوجھ محسوس کرتے تھے، وحی کا بوجھ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ تک جب وحی نہ آئی تو اللہ کے نبی اداس رہنے لگے، حتیٰ کہ پھر جب یا ایھا المدثر اور اسی طرح سورۃ شعرا کی آیات و انذر عشیرتک الاقربین جیسی آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو لبیک کہا. 13 سال تک اللہ کے نبی نے مکہ میں رہ کر وہ سب کچھ کیا جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا. یہاں غور سے سنیے گا ایک جملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال میں وہ سب کچھ کیا جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تبھی اللہ نے اگلا راستہ کھولا. ہم بعض دفعہ دین کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کوئی بڑی نیکی ہو ہم سے، نہیں ہوگی، پہلے چھوٹی نیکیوں کو قبول کریں. دوسری بات دیکھیے کہ 13 سال میں کوئی ایک موقع پہ بھی تو اللہ کے نبی نے کوئی لاڈ دکھایا ہوتا ہمارے جیسا، نہیں اللہ جی میں تھکی ہوئی ہوں، نہیں ہوتا، نہیں پلیز، میں نہیں، مجھے سونا ہے، مجھے نہیں کرنا، لوگ کیا کہیں گے، میرے بچے یہ کریں گے وہ کریں گے، نہیں ہوا. اور نہ صرف یہ کہ نبی بلکہ صحابہ، جتنی دفعہ سیرت پڑھی ہے باریکیوں میں جا کے صحابہ کے ساتھ جا کے، جو بھی مجھے کہیں صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک عمل ایسا نہیں ملتا کہ وہی کچھ کہہ رہی ہو تو آپ ذرا ریڑکنی سی کر رہے ہو. کبھی آپ کے ذہن میں آتا؟ نہیں ہوا نا. یہ ساری قربانیاں وہ دے چکے تھے، اب ان قربانیاں دینے کے نتیجے میں اپنے بیگانے بن گئے، دوست دشمن بن گئے. آج کی آیتیں آیت 30 اور اس سے چند اگلی آیتیں ہجرت کی وجوہات، کیوں اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا. پہلی تو بات ہے کہ یہ اللہ کا پلان تھا، اللہ کی سنت ہے کہ جب ایک جگہ پہ بات پوری ہو جاتی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور اب ان کو اتنی ضرورت نہیں، کسی اور کو ضرورت ہے تو بھی اللہ نبیوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے. اور دوسری ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے کہ جب فائدہ اٹھانے والے جتنے تھے بس اٹھا چکے، اب اوروں نے کوئی نہیں اٹھانا، ان کے نصیب میں اتنا تھا، تو پھر بھی اللہ نبیوں کو بھیج دیتا ہے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ وقت کا جو رواج ہے وہ اللہ کے نبیوں کے جینے کو دھوبر کر رہا ہوتا ہے کہ دین کا کام پھیلتا ہوا نہیں دکھتا. تو لہٰذا اب 13 سال کی مخالفتوں کے بعد اب وہ اللہ کے نبی کی جان لینے پہ آگے. آیت 30 کو دیکھیے گا، وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کیجئے جب کفار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. یہ کفار کون تھے؟ آپ کے چچا تایا پھوپھیوں خالاؤں کے بچے. اپنے اوپر لے کے سوچئے، نبی کی جان لینے کے لیے ان کے خاندان ہی کے لوگ پلاٹنگ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ پہلی آپشن لِيُثْبِتُوكَ، فرسٹ ون آپشن کہ آپ کو قید کر دیں، ثَبَتَ یعنی روک دیں، وہ کہتے ہیں نا ثَبِّتْ قَلْبِي، وہی ہے کہ یعنی ان کو ایک جگہ ایسے سیز کر دیں. انگلش میں لکھیں گے نا سیز تو یُثْبِتُوكَ وہ بالکل ایگزیکٹ میننگ ہوگا، یعنی ان کو ایک جگہ بند کر دیں. یہ نہیں تو اَوْ يَقْتُلُوكَ، دوسری یہ کہ پھر ان کو قتل ہی کر دیتے ہیں. یہ بھی نہیں تو پھر تیسری او یخرجو کا، آپ کو مکہ سے نکال دیتے ہیں. یہ تو ان کے پلان تھے، قریش مکہ دار الندوہ جو ان کا کلب تھا، ان کا میٹنگ روم تھا، اس میں بیٹھ کر یہ باتیں ساری کر رہے تھے، اللہ کے نبی کے قتل کے منصوبے تھے. لیکن ان کو نہیں پتا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی چالے چل رہے تھے اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا، پلاننگ کر رہا تھا. اور واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے. اس ایک آیت کے پیچھے واقعہ آتا ہے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کافی زیادہ لوگ ہجرت کر چکے تھے، اللہ کے نبی ابھی مکہ میں تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں تھے. نبی اس وقت تک کسی بستی کو نہیں چھوڑتے جب تک کہ اللہ کا براہ راست حکم نہ آ جائے. حالات بالکل مخالف ہو چکے تھے، پوری مکی زندگی ایسی تھی کہ اسلام کو ظاہر کرنا جان جوکھوں کا کام تھا، اور آخری دور میں تو بالکل سختیوں کا دور تھا. پہلے کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے، लेकिन अब मदीना की तरफ हिजरत करने की नौबत आ गई। सबब क्या बना कि मक्का वालों ने एक मीटिंग जमा की, मीटिंग बुलाई, उसमें मुख्तलिफ लोग जमा हो गए और उन्होंने आपस में सोचा कि इस फितने से कैसे निपटें। याद रखिए नबी सल्लम और आपकी तालीमात को वो फितना कहते थे, इंतशार, एक्सट्रीमिज्म, लोगों का सुकून बर्बाद कर रहे हैं, घर घर में इनकी वजह से मसले आ गए। इस तरह की हालात थे तो उन्होंने सारे कबीलों को, अपने बड़ों को जमा किया और नबी सल्लम के खिलाफ मीटिंग की। किसी तरह से इस मीटिंग में शैतान भी आ गया, एक शेख के रूप में, नजदी शेख आता है, सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा, क्योंकि शैतान का तो सबसे बड़ा गोल ही है ना कि दीन का काम करने वालों को बदनाम कर दो ताकि लोग दीन से मतनफर हो जाएं, क्योंकि लोग फिर दीनदार को नहीं छोड़ते, वो दीन को ही छोड़ते हैं, कैसे दीन को हमने क्या करना है जिसमें यह है। लिहाजा इसने कहा कि मैं दूर से आया हूँ, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ अगर तुम चाहो। कहा ठीक है, बैठ जाओ, तुम्हारे मशरों में शामिल होऊंगा। अब लोगों ने सोचा क्या करें, कैसे करें, तो एक ने क्या कहा कि ऐसा करते हैं कि हम, यानी इनसे जान कैसे बचाएं, उन्होंने कहा कि हम इनको कत्ल कर देते हैं, ना रहे ये ना बात हो। सारे जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी वो ऑप्शन है, लेकिन नजदी शेख चूँकि शैतान था, इसका तो इबलीसी माइंड था, कहने लगा मैं कुछ कहूँ, कहा को कहा देखो तुम इसको मार दोगे, तुम्हें नहीं पता कि इसके साथ प्यार करने वाले जान से भी नहीं डरते, थोड़े हो ज़्यादा हो लेकिन वो इस पर जान दे देंगे, वो तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, तो तुम इसको मारकर एक अपने लिए कत्ल होने की दीवार खोल रहे हो। कहने लगा ठीक है, ये भी बात दुरुस्त हो गई है, ये भी नहीं करते। फिर उन्होंने दूसरों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये नहीं हो सकता तो फिर क्या करते हैं कि अल्लाह के नबी को कैद कर देते हैं, बस एक जगह बांध देते हैं और ये कर दे। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ना करो, ये साथी तो जान पे खेल के आएंगे और इनको इस कैद से आज़ाद करके ले जाएंगे, निकाल के ले जाएंगे। कहा अच्छा ये भी नहीं तो फिर क्या होगा। कहा अच्छा फिर ऐसा करो, इसको यहाँ से निकाल दो, ना रहे बांस ना बजे बांसरी, कम से कम हम तो रोज़ रोज़ इसकी बातें नहीं सुनेंगे। शैतान कहने लगा बेवकूफ़ बनते हो, तुम्हें नहीं पता इसके बोल कितने मीठे हैं, ये तो अपनी बातों में उतार लेगा, तुम तो खुद बाहर जा रहे हो, ये बाहर जाके जिधर जाके अपना पैगाम सुनाएगा, लोग इसके साथ मिलते जाएंगे, अभी तो ये बात हमारे घर में। कहने लगे फिर हम करें तो क्या करें। तो इसके बाद आपको पता है कि अबू जहल जिसका दिमाग यानी इस बुराई पर चलता था, उसने कहा कि एक तरकीब है, सारे कबीले मक्का के ख़ानदानों के उनमें से एक एक लड़का आए, यंग एक ग्रुप बनाते हैं, यानी मिसाल है कि आपस में यूनाइट हो गए, इत्तेहाद किया, हम सब मिलकर इकट्ठे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला करते हैं और आपको मारेंगे। जब वो फौत हो जाएंगे, मर जाएंगे, यानी जब उनकी जान चली जाएगी, तो उसके बाद जब इनके ख़ानदान वाले यानी बनू अब मनाफ हमारे पास आएंगे, ऑफकोर्स आएंगे, जब वो देखेंगे कि इस कत्ल में सारे कबीले मिले हैं, तब हम सबसे लड़ाई तो नहीं मोल लेंगे, तो फिर वो कहेंगे कि दियत दे दो, सौंटों की दियत, तो हम सारे मिलके थोड़ी थोड़ी डालेंगे, चंदा करके तो दियत दे देंगे। इस पे नजदीक शेख ने कहा शाबाश, ये है अच्छी बात, चमक उठी आंखें, उसने कहा बेस्ट वे है। लिहाजा इस प्लान के लिए नबी सल्लम के घर का मुहासरा किया हुआ था, आप घर में थे, अभी ये मशवरे हो रहे थे कि अल्लाह ने वही के जरिए नबी सल्लम को हुक्म दिया कि आपको अब हिजरत करनी है। कड़कती दोपहर थी जब के आम लोग आराम कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी वहाँ से निकले, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वो सारी अमानतें सपुर्द की जो कुफारे मक्का की थी। यहाँ से देखिए कि कितने ट्रस्टवर्दी थे हमारे नबी के, दुश्मन जान ले रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आप पे ट्रस्ट करते थे कि आप हमारी अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आपने क्या की कि हज़रत अली से कहा कि आज की रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना, शायद वो हमला करें। देखिए अली क्या कहोगा, अच्छा जी मेरी जान लेके आप जा रहे हैं। मैं कहती हूँ वो क्या दिल थे उनके, लकड़ी की सिलें थी, ठीक है अल्लाह के नबी, यानी ये है समय नवताना इस्तजीबुलिल्लाह वलिर्रसूल इज़ादाकुम। याद रखिए कि इतने मजबूत किरदार लोगों को पैदा किए बगैर, ट्रेन किए बगैर इनकलाब नहीं आते। हम आज मुसलमान जितनी मर्जी ख्वाहिशें रखें ना कि इस्लाम फैले, मुसलमानों को बहुत तरक्की मिले, नहीं फैलेगी जब तक ये किरदार ना हो, जो अपनी ज़ात को बिल्कुल पीछे, जान को पीछे, माल को पीछे, इज्जत को पीछे चल पड़े। और याद रखिए ऐसे ही लोग तारीख साज होते हैं। एक जुमला लिखिए, सहाबा तारीख साज थे, हम खुद साज हैं, सहाबा ने तारीख बनाई, हम खुद को बना रहे हैं। हम मसलहतों का शिकार हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, रिएक्शन में आ जाते हैं, अपनी राय देते हैं। आज ज़रा कोई बात करें ना तो आप देखिए कि दिमागों में ऐसे जोश उबलता है, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। सहाबा को मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि उनका जोश ठंडा था। अब अल्लाह के नबी ने जब हजरत अली को कहा होगा कि आप मेरे बिस्तर पे लेट जाएं, मैं जाता हूँ और आप जाए, तो 10 ऑप्शंस तो अली के और बाकियों के पास भी होंगी ना अल्लाह के नबी को कहने की, ना करें, ना जाएं, अभी ना जाएं, थोड़ा ठहर जाएं, ये हो, हमारा क्या होगा? नहीं, समय ना बताना, ये है बस, माओ सुनो, गौर करो। और अली उस बिस्तर पे सोए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, और रिवायत में आता है कि आपकी जुबान मुबारक पे सूरत यासीन की इब्तदाई आयतें थी, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दम फख्शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आप इस तरह वहां से निकल गए कि हिसार किए हुए लोगों को पता ही नहीं चला। जब आप दूर चले गए तो शैतान ने खबर फैलाई, तो वो तो है ही नहीं इधर। उन्होंने कहा कि किसका था हिसार कर रहे हो? उन्होंने कहा मोहम्मद का। कहा वो तो जा चुके। कहा किधर है? दरवाजा तोड़ा तो देखा हजरत अली उनके बिस्तर पे सोए हैं। कहा आप कैसे हैं? उन्होंने कहा किधर है? कहा मुझे नहीं पता वो अभी किधर है। यानी आप कभी उन जिंदा किरदारों के अंदर झांक के देखें तो आपको आज के मुसलमानों के लिए लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगी। तो इसका जिक्र अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी को हुक्म दिया, आप उस घर से निकले, अबू बकर के घर गए। हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के नबी रोज हमारे घर आते थे जब से मैंने आपको देखा है, लेकिन कभी इस वक्त नहीं आते थे। आप आए, कहा अबू बकर दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दिया। कहा अबू बकर सबको बाहर भेज दो। कहा अल्लाह के नबी घर में आपके मेरे घर वालों के सिवा कोई नहीं। इशारा था हजरत आयशा की तरफ, और निकाह हो चुका था आपका। फिर आप, अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे हिजरत का हुक्म मिल गया। उस वक्त अबू बकर ने कहा कि अल्लाह के नबी क्या मुझे भी मिला? हाँ। तो आयशा कहती हैं कि मैंने अपने बाप को खुशी की वजह से रोते देखा, और अगर मैंने अपने बाप को उस मौके पे रोते ना देखा होता तो मैं कभी ना मानती कि कभी को खुशी से भी रोता है। कहा अल्लाह के नबी मैंने तो सारी तैयारी की हुई है, घर के पीछे ऊँटनियाँ तैयार थी, आमिर बिन फुखैरा उनके गुलाम थे, उनको बकरियों का एक ग्रोह बना के रखा हुआ था तैयार, कि जिधर जाएंगे ये हमें दूध भी पिलाएंगे, और उन रस्तों से जहाँ से हम गुजरेंगे पीछे से बकरियों को गुजारते जाएंगे ताकि खोजी हमारे खुरना नाप सके। बेटी अस्मा खाना बना के उसको अपने वो पटके के सब बांध के पीछे लेके जा रही है, बेटा रात को, यानी सुनिए आप, ये जो मैं आपको अक्सर इशारा करती हूँ ना कि डेजर्ट रोज और क्या था सहरा का पुल और दूसरा एक और अधूरे यतीम, इस छोटी सी सीरीज है, मेरा 1.5 2.5 घंटों में आप पूरा मक्की दौर सुन लेंगे और मदनी। हिजरत की राहें कदम ब कदम, वो क्या अबू बकर के सफर थे और अल्लाह के नबी गए। कोई खुशी का मौका था, कोई पार्टी में जा रहे थे जो अबू बकर खुश हो गए? जान के लाले, मक्का वालों ने ऐलान कर दिया कि 100 ऊंटों की कीमत, जिंदा या मुर्दा, मोहम्मद को पकड़ के ले आओ। लोग पीछा करने पे चल पड़े, लेकिन आप देखिए कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आपको उसे निकाल दिया। ये आगे जिक्र आएगा इंशाल्लाह, वहाँ हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आप क्या सुनाते हैं कि हाय हालात ख़राब हैं, वो ख़राब है, ये हम अपने ईमान के पोल खोलते हैं। वल्लाही अल्लाह के हालात कभी ख़राब नहीं हुए मेरे लिए, मुमकिन नहीं। मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं किसी को अल्लाह ना करे बदगुमान नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको उस ईमान की दावत देती हूँ कि जिसमें फिर अल्लाह की मदद आ जाती है, जो हो सके यकीन। ये यकीन के रास्ते हैं, मेरे जैसे आप जैसे इजमाएं तो हो सकता है आज इब्राहिम की आग सबको जला देती। इब्राहिम को क्यों नहीं जलाया आग ने? अल्लाह के नबी को क्यों नहीं चारों तरफ से लोग कोशिश के बावजूद पकड़ सके? वो ईमान नहीं है। हम डाउट्स रखते हैं, शक है, अंदर खुद साजी है, ऊपर से दीन साजी है, ऊपर से हाय बाय, अंदर से दिल कटे हुए, खट्टे दिल है हमारे। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों के सभी मदद नहीं आती, तो यहाँ इशारा कर दिया। ये बात आगे जाके इंशाल्लाह हम मजीद पढ़ेंगे।